हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। युग को जल्द से जल्द तीसरा पड़ाव पार करना था, इसलिए वो कृषा और मलिक के साथ कर्नाटक के कोलार में पहुंच चुका था। जब भी युग को कोई पड़ाव पार करना होता था तो वो अक्सर रात का टाइम ही सिलेक्ट करता था। रात के समय एक शांति होती थी और इस तरह की सुनसान जगह पर रात होने की वजह से वो अपना काम आसानी से भी कर पाता था। रात के 1 बजे के करीब युग कृषा के साथ अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका था। कोलार से लगभग 40 मील पर दूर वो माइंस के पास थे, जहां पर उन्हें तीसरा पड़ाव पार करना था। वहां सिर्फ एक माइन नहीं थी बल्कि दर्जनों की संख्या में थी, इस वजह से उनका काम मुश्किल होने वाला था। कृषा ने वहां पहुंचते ही चारों तरफ देखते हुए पूछा, कौन सी माइन में जाना है कुछ समझ नहीं आ रहा। इस जगह पर इतनी सारी माइन्स हैं तो मैं कन्फ्यूज हो रही हूँ। तुम्हारे कन्फ्यूज होने का कारण एक ही है और वो है तुम्हारा अपनी पोजीशन किसी और को देना। अगर खुद अपनी जगह संभाली होती तो हमसे पहले तुम्हें पता चलता तुम्हें कौन सी माइन के अंदर जाना है, युग ने कृषा को टॉन्टिंग वे में कहा। कृषा उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देख रही थी। जब भी मौका मिलता युग उसे इस बात का ताना मार ही देता था कि कृषा को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। उन दोनों के बीच वहाँ कोई बहस न हो जाए इसलिए मलिक ने बीच में बोलते हुए कहा, मेरे पास मैप है, हम उसके जरिए पता लगा लेंगे। हर बार तुम हमारे बीच की बहस को रोक नहीं सकते। तुम एनी टाइम हम दोनों के बीच अवेलेबल नहीं होते हो मलिक, तो इसकी झूठी कोशिश मत किया करो, युग ने सिर हिलाकर कहा और फिर अपने हाथ में मौजूद टॉर्च को जलाया। युग उनसे थोड़ा आगे चलते हुए बोला, चलो मेरे पीछे आओ, तुम अपने मैप को देखते रहना और तुम यहाँ कन्फ्यूज होते रहना। मुझे ना तुम दोनों पर ही गुस्सा आ रहा है, एक को कुछ पता नहीं है और दूसरे को सब कुछ पता होने के बावजूद कुछ याद नहीं है। सीरियसली मलिक, तुम यहाँ पर मैप लेकर आए हो, तुम ये याद नहीं रख सकते थे क्या? कृषा के बाद युग अपना गुस्सा मलिक पर उतार रहा था क्योंकि उसे उस जगह का नक्शा याद नहीं था। युग सीधे जा रहा था जबकि मलिक और कृषा उसके पीछे आ रहे थे। युग आगे निकल गया तो मलिक ने पीछे से उसे रोकते हुए कहा, हमें यहाँ से दाएं मुड़ना था। युग का गुस्सा देखकर भी कृषा को हंसी आ रही थी। युग वापस आया और दाएं तरफ मुड़ गया। वो तीनों कुछ ही मिनट चले होंगे कि वहाँ किसी की तेज आवाज आई, जल्दी आओ, कब से तुम लोगों का वेट कर रहा हूँ, तुम कब से लेट होने लगे डेविल, लगता है शादी करने के बाद तुम बाकी लोगों की तरह इर्रिस्पॉन्सिबल हो गए हो। वो रिदांश ओबेरॉय था। रिदांश की आवाज सुनकर युग के फेस पर स्माइल आ गई। उसने टॉर्च की रोशनी सामने की तो उसके सामने रिदांश खड़ा था, उन्हीं की तरह पूरे ब्लैक आउटफिट पहने हुए और अपने साथ में एक बैग लिए हुए। रिदांश के पास पहुंचते ही युग सबसे पहले उसके गले लग गया। कुछ देर हग करने के बाद वो युग से अलग हुआ और कहा, चलो तुमने अपना वादा निभाया, मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि जब भी तुम्हें जरूरत होगी मैं बिना किसी सवाल के तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। तुम्हें प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि बिना प्रॉमिस किए भी मेरे एक कॉल के साथ तुम आ जाओगे, रिदांश ने जवाब दिया। कृषा ने पहली बार युग को किसी से ठीक से बात करते देखा था। वो दोनों भी उनके पास आ चुके थे। कृषा एक टक रिदांश की तरफ देख रही थी। वही रिदांश ने भी कृषा की तरफ देखकर युग से पूछा, अच्छा तो ये है हमारी माफिया प्रिंसेस। बोलते हुए उसने टॉर्च की रोशनी कृषा की तरफ डाली। उसने भी उनकी तरह ब्लैक पैंट के ऊपर ब्लैक कलर का टॉप और जैकेट पहन रखा था। रिदांश को कृषा देखने में काफी मासूम और सीधी सी लगी। माफिया में काम करने वाले लोग इतने ट्रेंड होते थे कि किसी के भी फर्स्ट लुक को देखकर उसके बारे में काफी कुछ पता लगा देते थे। रिदांश ने भी कृषा को एक नज़र देखने के बाद ही उसके बारे में युग की तरफ देखकर कहा, चलो तुम्हारे नाम के आगे से माफिया हटा दे, तुम तो एक प्रिंसेस ही हो। कृषा पहले ही युग के तानों से परेशान थी, ऊपर से रिदांश ने भी उसे यही कहकर बुलाया था। उसने रिदांश की तरफ तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, और आप बिल्कुल अपने फ्रेंड की तरह हो, अब हम यहाँ पर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं, तो ये भी हमारी तरह यहाँ पहली बार आ रही है, देखा मैंने इसे सही पहचाना था, रिदांश ने युग की तरफ देखकर कहा, जिस पर जवाब में उसने कंधे उचका दिए। लगभग 5-7 मिनट वहाँ खड़े होकर बातें करने के बाद वो लोग माइंस की तरफ बढ़ने लगे। लगभग काफी सारी माइंस को पार करने के बाद आगे चलने पर एक छोटी माइन बनी हुई थी। उसके दरवाजे पर आते ही मलिक और युग ने अपना अपना बॉम्ब डिटेक्टर ऑन कर लिया था। जैसे ही उन्होंने उसे दरवाजे के एक तरफ किया तो मशीन में से बीप की आवाज आने लगी। रिदांश ने अंदर की तरफ देखते हुए कहा, जगह काफी छोटी है और सिक्योरिटी काफी टाइट की हुई है, हमें संभल कर चलना होगा, यहाँ पर कदम कदम पर बॉम्ब प्लांट किए हुए हैं, अगर किसी ने गलती से भी कदम रख दिया तो मैं संभाल लूंगा, बाकी कोशिश करना कि गलती से भी कोई गलती ना हो। युग ने रिदांश की बात पर हामी भरी और फिर कृषा की तरफ देखते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया। कृषा उसकी इस हरकत पर हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी तो युग ने कहा, मुझे ऐसे मत देखो, अगर मैंने पैर रख दिया तो मैं संभाल लूंगा, तुम्हारा पैर रखना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। युग ने कृषा को बाहू में इसलिए उठाया था कि अगर गलती से भी वो बॉम्ब पर पैर रखते तो कृषा को नीचे उतार सके। युग कृषा पर आए हर खतरे को खुद पर ले रहा था। कृषा भले ही युग के इस जेस्चर का मतलब ना समझ पाई हो, लेकिन रिदांश अच्छे से समझ गया था। उसने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, अच्छा तो तुम्हें इससे प्यार भी हो गया है। उसके बाद वो तीनों आगे बढ़ने लगे। रास्ते में काफी जगह उन्हें बॉम्ब डिटेक्टर से बीप का साउंड आया, लेकिन युग काफी सावधानी से चल रहा था। युग सबसे आगे था। माइन को पार करने के बाद वो तीनों तीसरे पड़ाव के उस हिस्से तक पहुंच चुके थे जिसके लिए उन्होंने इतना खतरा लिया था। लकीली उन तीनों को रास्ते में किसी भी बॉम्ब के ऊपर पैर नहीं रखा और वो सेफली वहां तक पहुंच चुके थे। उनके सामने एक इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा था। इस दरवाजे के ठीक पास कोड लगाने के लिए बटन लगे हुए थे। रिदांश ने दरवाजे का जायजा लिया और कहा, ये काफी सिक्योर डोर है। लॉक सिस्टम को देखकर लग रहा है ये 3 बार से ज्यादा गलत पासवर्ड सपोर्ट नहीं कर सकता। शायद इसके बाद ये माइन उड़ जाए या फिर कुछ ऐसा हो जिससे हम तीसरे पड़ाव तक न जा सकें। युग ने आकर कीपैड को देखा और फिर कहा, इसका पासवर्ड क्या हो सकता है? मलिक सोचने लगा। थोड़ा सोचने के बाद उसने कहा, सारी चीजें माफिया प्रिंसेस से जुड़ी हुई हैं, तो कहीं न कहीं इसका पासवर्ड भी इनसे जुड़ा होना चाहिए। तीनों कृषा की तरफ देखने लगे। कृषा ने कंफ्यूज चेहरा बनाते हुए कहा, मेरी बर्थडे ट्राई करके देखिए। फिर उसने अपनी बर्थडे बताई। रिदांश ने पासवर्ड लगाया तो ये गलत था, जिसके बाद वो कृषा को घूर कर देखने लगा। कृषा ने अपने सिर पर हाथ रखा और कहा, सॉरी, मेरी रियल बर्थडे यूज करिए। दरवाजा खुल गया। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा सामने एक बड़े से शोपीस में एक किंग का गोल्ड कार्ड रखा हुआ था। उसे देखते ही कृषा ने मुंह बनाकर कहा, क्या हम इस मामूली से किंग के कार्ड के लिए इतना खतरा मोल लेकर यहाँ आए हैं? हद हो गई, इसे तो हम बाहर से भी बनवा सकते थे। कृषा की बात सुनकर रिदांश के फेस पर हल्की स्माइल थी, जबकि युग उसे घूरते हुए देख रहा था। युग अपने इमोशंस शो नहीं करता था, लेकिन रिदांश उससे अलग था। माफिया में होने के बावजूद उसके सीने में दिल था और दूसरों के लिए दया।
वो तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी मलिक ने कहा, खतरा अब यहीं से शुरू हुआ है। बिना बॉम्ब पर पैर रखे हम कार्ड तक नहीं पहुंच सकते। आप रुके, मैं आगे जाता हूँ। एक अच्छा वफादार आदमी होने के नाते मलिक आगे जाने को हुआ। तभी युग ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें खोना भी अफोर्ड नहीं कर सकता। हम दोनों ही आगे जाएंगे। अगर गलती से भी कुछ हुआ तो रिदांश है यहाँ सब संभालने के लिए। वहाँ बहुत कम जगह थी कि आगे जाया जा सके। युग ने कृषा को ठीक से उठाया और फिर अपने एक पैर पर बैलेंस बनाते हुए वो आगे जाने लगा। उसे देखकर रिदांश ने कहा, तुम सच में इस पोजीशन के लिए बहुत डेडिकेटेड हो और डिजर्व भी करते हो। मुझे यहाँ अपनी तारीफ नहीं सुननी रिदांश ओबेरॉय, जिस काम के लिए बुलाया है वो करो, युग ने आइज रोल करके कहा। वो काफी सावधानी से चल रहा था, फिर भी उसने माइन की एक बॉम्ब पर पैर रख ही दिया। रिदांश उसके पास आया और बॉम्ब को डिफ्यूज करने लगा। वो इस काम में एक्सपर्ट था, इसलिए उसे ज्यादा सोचना नहीं पड़ा और उसने जल्द ही बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया था। बॉम्ब डिफ्यूज करने के बाद रिदांश ने एक नज़र माइन की तरफ देखा और सीरियस टोन में कहा, कार्ड निकाल दिया तो उसके बाद हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। हाँ, सिर्फ 5 मिनट का टाइम होगा, हमें बाहर निकलना होगा क्योंकि कार्ड निकालने के बाद सारे बॉम्ब अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे, युग ने जवाब में कहा। वो पहले से ही जानता था कि ये सब होगा। कृषा को इन सब में काफी डर लग रहा था, लेकिन उसने देखा युग के चेहरे पर घबराहट का कोई भाव नहीं था। उसने धीरे से कहा, पता नहीं ये सब कैसे कर लेता है। मौत सर पर खड़ी है, लेकिन फिर भी इसके चेहरे पर कितना सुकून है। युग को कृषा की बात सुनाई दे गई थी। उसने कृषा की तरफ देखकर जवाब में कहा, हाँ, क्योंकि खतरों से खेलना मेरा काम है और ये पहली बार नहीं है। कभी फुर्सत से बैठना, मेरे एडवेंचर्स लाइफ के किस्से अच्छे से सुनाऊंगा। कृषा को जवाब देने के बाद युग आगे बढ़ा। कार्ड के पास आते ही युग ने कृषा से कहा, इसे सिर्फ तुम ही निकाल सकती हो क्योंकि ये तुम्हारी फिंगरप्रिंट से ही अनलॉक होगा। कृषा ने उसकी बात पर हामी भरी और आगे हाथ बढ़ाकर कार्ड को निकालने लगी। उसके फिंगरप्रिंट स्कैन होते ही कार्ड अपने आप जिस सेफ के अंदर अटकाया हुआ था वहां से थोड़ा ऊपर आ गया। कृषा ने उसे लिया। कृषा युग को कुछ कहती उससे पहले युग ने कहा, तुम्हारी बातें बाद में सुनूंगा, अभी टाइम नहीं है। सारे बॉम्ब एक्टिवेट हो चुके हैं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। माइन काफी लंबी थी, रिदांश के पास काफी सामान था, लेकिन इस वक्त उनकी जान ज्यादा कीमती थी। रिदांश ने बैग को फेंक दिया। मलिक ने नक्शे को ठीक से रखा और युग ने कृषा को नीचे उतारकर उसका हाथ पकड़ लिया। वो चारों बाहर की तरफ भाग रहे थे। रास्ता काफी लंबा था और उन्हें 5 मिनट में तय करना था। 5 मिनट पूरे होते कि वहाँ एक जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरी माइंड बॉम्ब के धमाके से जलने लगी।